ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2,25,00,000 से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति के उचित प्रलेखन से बैंकों से ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा।
स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति स्वामियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने आज आरोपी संजय रॉय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया। सियालदह के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय 20 जनवरी को आरोपी को सजा सुनाएगा। 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से जुड़े धन शोधन मामले में 300 करोड़ रुपए की 142 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य कई व्यक्तियों पर कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल 1,521 नामांकन पत्र भरे गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन भरने के अंतिम दिन कल 680 नामांकन भरे गए। भारत और अमेरिका ने साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और आपराधिक जांच में डिजिटल फॉरेंसिक मामले में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग की उप सचिव क्रिस्टी कैनेगेलो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खां पर मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में चाकू से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ की है। उधर महाराष्ट्र के गृह राजस्व ग्रामीण विकास मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि घटना के पीछे लूटपाट ही एकमात्र मकसद था और हमले में कोई अंडरवर्ल्ड गिरोह शामिल नहीं है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में श्रद्धालु और तीर्थयात्री अब आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से लाइव सुन सकते हैं। आज सुबह 8:30 बजे कुंभवाणी समाचार बुलेटिन महाकुंभ नगर में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया गया। 10-10 मिनट का कुंभवाणी समाचार बुलेटिन सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है। गजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते के पहले चरण में इसराइल 735 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल के न्याय मंत्रालय के अनुसार 3 चरणों वाला यह समझौता कल से लागू हो गया। इस दौरान इसराइल के 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 में आज भारतीय पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला टीम आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में होगी। इसके बाद भारतीय पुरुष टीम दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेलेगी, जो 8:15 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले सप्ताह की शुरुआत में बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।